Today I want to share something which I have been thinking during the past few weeks. I need to look at our own lives. Yeah. By the way, there's a nice instrument here which will help us to maintain time. I want to use it for myself. So each of us, when we can use this talk clock to manage our time well. I want to read something from Luke chapter 22. Luke chapter 22. This is a passage about illustrating how Peter denied Jesus literally, and not only once, three times. We read here in verse 54, Luke chapter 22, verse 54. In the last portion is written, Peter was following at a distance. This was a background when Jesus was arrested. So, a disciple who was very close to Jesus. Now, it's interesting, it is written, he was following at a distance. Someone close to Jesus. A time of difficult time, challenging time has come. So that time, he is following Jesus, but it's interesting to read that. He is following at a distance. So it's a little beginning. So we read further in verse 56. And a servant girl, seeing him as he sat in the firelight and looking intently at him, said, this man was with him too. This servant girl was looking at Peter and telling, this man is also with Jesus. So how did Jesus respond? In verse 57, here is the response. And he denied it, saying, woman, I do not know him. Understand? Peter is telling to this servant woman, woman, I do not know him. Know whom what? I do not know Jesus. It's coming out of the mouth of Peter. And a little later, verse 58, a little later, another saw him. Saw Peter and said, you are one of them too. A second person confirmed. But Peter said, man, I'm not. See the word? Man, what are you doing? I'm not with him. Jesus, I don't know Jesus. He is denying Jesus. And verse 59, after about an hour has passed, another man began to insist, saying, say third person, certainly this man also was with him, for he is a Galilean too. He's confirming this man third time. He certainly belonged to Jesus. He was part of Jesus' group. But Peter said, here is the answer. Man, I do not know what you are talking about. In another place, it's written, he began third time. He began, it's written in Matthew, same written in the Gospel of Matthew, it's written, he began to deny and curse, saying that altogether, out and out, denying in Jesus. So when I used to read this passage as a young Christian many years, I used to become literally angry at Peter. What is he doing? Who 3.5 years Peter was with Jesus, he was supposed to be very loyal to him, and now a time of trial came. He's denying him, saying things like, man, I do not know him, and cursing and denying. What is he doing? I would never do it. If I had got an opportunity to talk to Peter, I would show my peace of mind to him. I used to think like that. I was angry at Peter. But I understood over the years, we may not deny Jesus with our mouth. We may not. I may not. None of us may not. But we can deny Jesus in different ways. May not be very vocal, but through our life. By displaying, by our behavior, by our conduct, we can deny Jesus. Act as if we never knew Jesus. Act as if I am not a believer. Act as if I am not a disciple. We can deny Jesus in different ways. It's interesting. This is also touching. So when Peter denied Jesus three times, what Jesus had told him happened. Immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. Jesus told Peter, he had even warned him. You are saying, earlier Peter had told, I am willing to suffer with you and I am willing to die with you. This is what Peter had told Jesus. But Jesus told, be careful. And I am telling you, you are going to deny me. Three times before this day, rooster crowed. And that happened. And at this point of time, verse 61, Jesus turned and looked at Peter. Jesus turned and looked at Peter. So when I read this, very often I thought about it, I meditated about it. I have seen that the gaze which Jesus gave to Peter, I don't think it was a look of accusation. It's not a Peter, did I not tell you? I don't think. I think my heart says it's a knowing the life character of Jesus. He was looking at Peter with the compassion, showing sympathy to him. He had fallen. Even after falling, it happened to him. But he was showing a gaze of compassion. And that melted the heart of Peter. In verse 62 we read, and he wept bitterly. So when Peter saw the gaze of Jesus and the compassion in his eyes, he went out, repented thoroughly. He recognized his own nothingness, and he went out and wept bitterly. And we understand when we read the passage in the scripture, Acts of the Apostles, first, etc., we understand how a man who had failed so visibly, so in front of everyone, in the sight of everyone, and Jesus restored him. So this gives us hope. People like you and me who have failed Jesus, who have denied Jesus many times, we still have hope. We need not condemn ourselves. Jesus does not condemn ourselves. He still looks at us with hope and expectation, with a heart of compassion, willing to stretch his hands and help us. That is which gives us hope and courage. So don't be discouraged if we have denied Jesus in any way. We have hope. Jesus still looks at it with compassion. And the way he restored Peter, he can restore us. And in the first, after the day of Pentecost, when Jesus spoke for a few minutes, 3,000 people were cut to their heart. They were repented. They became believers and disciples. So you can understand what transformation happened in the life of Peter. So that is our hope. Each one has still hope. Wherever we have failed, wherever we have denied Jesus, wherever we were unfaithful, and no need of condemnation. We have hope. If Jesus could restore Peter, each one of us, there is nobody probably here in this hall worse than Peter. But Jesus could restore Peter, so also he can restore each one of us if we just give ourselves to us. So we have hope. It's a wonderful good news. We read in we can see little things for our own understanding, how we can, even though we don't deny Jesus with our mouth now, with words, how it can happen. Sometimes unknowingly, out of our ignorance, not knowing, I'm really denying Jesus by this. We read in 2 Timothy chapter 3 verse 5, it's speaking about people, towards end time, certain things are what all things would happen is written. And at the end, in conclusion, he's saying like 2 Timothy chapter 3 and verse 5. Holding a form of godliness but denying its power. So it can happen to us. We understand the terminologies, we can understand scriptural language, Christian language, etc. We go to church every Sunday. We are very active in every way. We can have a form of godliness. Everybody will think we are very wholehearted people. But in our hidden life, there is a possibility which we can look at ourselves. We may be denying its power. We have a form of godliness, a form of religion, a form of godliness, but denying its power. We denying by our life that I am a disciple of Jesus. We are sometimes ashamed to confess when we have an opportunity, reveal that we are a disciple of Jesus. Does it happen to us in practical life sometimes to reveal that I am a, when we are challenged with situation to compromise, we have an opportunity to by our words say, I can't do, sorry, I cannot do this. I am a Christian. I am a disciple of Jesus. I am not available for this. Maybe in financial transactions, people on the world may be doing everything and they may be expecting us to do. There may be some, we can derive some benefit, financial benefit. Are we willing to, by that act, we are behaving as if I am not a believer, as if I never knew Jesus, as if I am not a disciple. We can do that. But if you are willing to pay a cost, if you love the Lord, it will be joy for us to say, I don't bother about money. What God gives to me, that is enough. I am thankful for that. But I don't want to serve the unrighteous mammon. I'm more than glad to give it up. Money which is not due to me in a wrong way. And we can say the reason. I am a disciple of Jesus. I am a Christian. I'm not happy to do it. I don't enjoy getting money, unrighteous money coming to my heart. I don't need it. Do we see practical life in an opportunity like that? Opportunity to reveal that I'm a disciple. So when you're succumbing to pressure, what are you doing? Unknowingly we are saying that I never knew Jesus. In Psalm 50, 17 to 21. Psalm 50, 17 to 21. For you hate discipline and you cast my words behind you. This is as God speaking to us. We can say Jesus speaking. One thing is we reject discipline, correction, and we cast his word behind. We neglect, ignore, we despise the word of God, the commandments of God. And verse 18, when you see a thief, you are pleased with him and you associate with the adulteress. When you see a thief, we go to that level. People who manipulate, do all the wrong things. When we are in their company, we think that we give them comfort. Oh, I am also like you. That's what is written there. When you see a thief, you are pleased with him. We don't correct them. We don't boldly speak it. This is wrong. We don't say that. I am also like you. That impression we give. And you associate with adulterers. We may not be physically involved in adultery, but when people speak all wrong language, juicy things, we also laugh and enjoy and be part of them. What are you doing? They feel comfortable to speak to such such things, and we enjoy, we give them company to listen, we open our ears to listen such things, which we should not be. What are we doing? I am indirectly saying, silently saying, I did not know Jesus. I am not a disciple of Jesus. I am not a Christian. I never knew Jesus. Are we not doing that? And in verse 19, let your mouth You let your mouth loose in evil and your tongue frame deceit. We sometimes very speak about the use of tongue as a disciple. It's good to challenge us, encourage one another how we speak things, especially in when we are free in close circles. Do we behave like as if we are not, we never knew Jesus? Do we speak things as if we are not disciple of Jesus in our own little circles? Or we walk in the fear of God? There in verse 20 it says, you sit and speak against your brother. You slander your own mother's son. Do we do that? We speak, when we freedom comes, we don't feel wrong to speak about others who are not present. Maybe somebody, some brother, some sister, they might have faltered, something happened, but we feel free to speak about gossip, slandering about brothers and sisters. What are we doing in that process? We are saying that I never knew Jesus. We are denying Jesus. I'm not a Christian. I'm not a disciple. I'm just like a worldly person. With my tongue, I can speak anything. I'm just saying, brothers and sisters, just things which challenged me, just to encourage you, not to condemn or seeing or observing anything. I'm just generally speaking, these are things we can apply in our own lives. We may not be denying Jesus directly with our words, but our actions, we may be doing that. So what are we going to do? And verse 21 says, these things you have done, and I kept silence, and you thought I was like you. I will reprove you and state the case in order before you. So what is God? God is patiently not doing anything. We think God is also, Jesus also like me. He also speaks the way I speak. He also listens all these juicy things. And he also slander. This how? Are we? God is asking, I am silent. I am patiently waiting, thinking that you may change. But you think I am also like you. May God really help us. And in our hidden life, let the love of Christ compel us. And it's good to examine ourselves, not to judge, not to look at others. How is my secret life? I may not be denying Jesus openly as Jesus did. It is good that he did openly. Jesus could rebuke, deal with it. But in secret, in silence, by our action, by our behavior, by our conduct, we can deny Jesus. So may God open our eyes and we can see even to us. Imagine Jesus looking at us with that compassion, with the same way he looked at Peter. And that need to melt our hearts also even now, and so that we can change our ways. We read in Hebrews chapter 6. Hebrews 6. Hebrews 6, 4 to 6, verses 4 to 6. Hebrews 6, 4 to 6. For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. So this is speaking about people who knew Jesus, who knew God, who knew, understood God's ways, who tasted the Holy Spirit, who understood what is the word of God. But such people, verse 6 says, when they have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance. See the word. Since they again crucify for themselves the Son of God and put him to open shame. So when I read, I really wept. Do we do that? When we take sin serious, without seriousness, this is what we are doing. We are again giving pain to Jesus. We again crucifying Jesus. And we are again putting him to open shame. We may not literally do that, but by taking sin lightly, this is what you are doing. We are crucifying Jesus again. And we are putting him to open shame. So this is something which wakes us up and drives us. And something similar thing is written in Hebrews chapter 10, verse 29. Hebrews 10, 29. Yeah, Hebrews 10, verse 26. Hebrews 10, 26. For if you go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there is no longer remains a sacrifice for sins. He's speaking about sinning willfully. He's not speaking about the slipping. It is speaking about sinning willfully. It's a very, very serious thing. Once we come to Christ, once you know the Lord, and we willfully sinning is a very, very, very serious thing. We are not talking about, we understand, we normally say a story, like a cat. It wanted to preserve itself, but it slipped and fell into a pit. So what it will do, it will quickly try to jump out of it, come out and clean itself. And our life should be like that cat. Our desire to preserve us. But that cat happened to slip down unknowingly. It did not want to be there. Even after falling, it did not remain there. It took all its energy and come out and cleansed it. But a pig, its desire is there. It will not keep itself. If it by chance falls into the pit, it will remain there. It will enjoy that dirt. So you can understand. A transformed mind, a renewed mind, a regenerated mind, and a person who is not regenerate. So God wants us to be like that cat. So we are not talking about here about that cat mistakenly falling. There is a solution. We can confess our sin. Jesus will forgive us, cleanse us from all unrighteousness. But if we willfully sin, there is no remedy. I know it is wrong, but I'm determined to do it. Something can happen. People do that. Willfully sinning. So here it's written about. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there is no longer remains a sacrifice. Nothing. Jesus cannot help us. And the way it is emphatically written, verse 29, how much severer punishment do you think he will deserve who has trampled under the foot the Son of God, who has regarded and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified, and has insulted the Spirit of grace. So when we are willfully sinning, what are we doing? I dread to even read that. Trampling Jesus under the foot. That is what is written there. When you are willfully sinning, we are trampling Jesus under our feet and regarding the blood of Jesus as we are despising, and we are insulting the Holy Spirit. So this is all written so that it gives us seriousness and desire to preserve ourselves. May God really help us, and that passion and desire be in our heart to love Jesus, and as a result of our love, it will be a joy for to serve him. Christian life is not a burden. It is not intended to be a burden. When you love the Lord, that love of Christ compels us. And preserving ourselves, hating sin is not a burden. But when you love Jesus, it is an easy thing. That I want to do so that I can please my Lord. We often say that Christian life is not a religion. It's not being a member of an organization. It is what? What is Christian life in a simple term? It is a relationship. It's a relationship, love relationship with Christ. That is Christian life. That is our foundation. It is easy to be part of a church, a member of a church, organized to part of the religion. But that is not the true Christian life. True Christian life, being a disciple, is a love relationship with Christ. That love of Christ motivates us. And when the love of Christ constraining us, motivating us, it is no more a burden. We'll be glad to do things which to please someone whom we love. We know that in our, it's a human nature. So when you love Jesus, when the love of Jesus is driving us, Christian life becomes easier. I just want to close. I was reading a verse from Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Isaiah got a vision about the Jews. Many things in the Old Testament are written for our learning, to be like a shadow. So Jews, there was a time when they had a golden period when they were living in the favor of God by obedience and their commitment to the Lord. But there was a time down the history that they went away, backslidden, away from the living God who delivered them, and became, their lives became worse than pagan people. The way they subjected them to idolatry and all kind of unspeakable sinful things, even though they had seen with their own eye, their own lives, how God miraculously delivered them. But leaving all those, they could forget all those, and they could become worse than many other ungodly people. This can happen to us if you are not careful. Here we read in verse 2 and 3. Listen, O heavens, and hear, O earth, for the Lord speaks. Sons I have reared and brought up, but they have revolted against me. God is talking about Jews, his people. It can apply to us. And he's saying that he's illiterate in a pictorial way. Verse 3. An ox knows its owner. An animal, even an animal like an ox, it has a due respect and a loyalty to its own owner. An animal, an ox. You must have seen that, right? And when it's called to go home and into the... it will go. So an animal, like an ox, knows his owner, and a donkey is master's manger. But he's speaking about God's people. But Israel does not know. And my people do not understand. My people do not understand. So I was reminded about these things, to warn ourselves, to keep ourselves, to preserve ourselves, as we claim to be children of God, as we claim to be disciples of Jesus. And as I did, we can blame Peter. And we can be angry at Peter. But don't forget to see our own lives. Are we silently, through our actions and our conduct, our life, despising what God has done for us? Are we denying the Lord through our actions? May God really help us. I was thinking, it can happen, you know, especially in financial dealings, in the way like people do, and they cheat others and derive a, they claim to be smart. But if we honor God, we can take a stand. I remember Brother Zach was once telling, one girl asked him, how I can, what is the best way to dress? Brother Zach gave an answer, you know, you probably may remember it. Think that Jesus is living next door. And suppose one evening, Jesus wants to take you to go for a walk through the market. And you are my sister. So he was telling, dress in such a way that Jesus will be proud of you to walk with you. And Jesus can introduce you to others. This is my sister. So it's not the same way with the brothers. Our life, our conduct, the way we live. You know, we can encourage, challenge ourselves. Can Jesus be proud about me? And the place where I go, can I ask Jesus also to come with me? We can apply to many things. When we have a desire to see movies, etc. So this is something which is the particular movie. Can I go with Jesus? So if we are not applying in our life, we can become, our value system can be so much eroded. Our life can be so irrational, unrealistic, like the actors. But when we honor the Lord and seek His presence in our life, in our workplace, wherever we are, we can glorify Him. In the same way, and as I mentioned, the conversation we are involved in, so it's good to challenge and ask ourselves, can Jesus be here? Would Jesus enjoy that joke, that crude joke? Would he enjoy? Something which we can ask ourselves. May God really help us and learn to desire to learn to glorify Him and be loyal to Jesus instead of crucifying Him again, instead of putting Him to open shame, instead of trampling Him under feet, instead of despising the Word of God, instead of belittling the Holy Spirit, let us value the good thing God has done for our life and continue to seek to live in the favor of God in our lives.
परमेश्वर नाम का धन्यवाद देता हूँ. Praise and thank the Lord. Can you hear now? बहुत ही अच्छे तरीके से आज परमेश्वर हमसे बातें किए वचन के द्वारा. क्योंकि जब मैं पाप के साथ रहता हूँ या पाप को मैं सहयोग देता हूँ तो मैं परमेश्वर से दूर होता हूँ. और परमेश्वर का जो प्रेम है ना, इतना गहरा, इट्स सो डीप, इट्स सो वास्ट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड. क्या मेरा प्रेम भी वैसा ही है क्या, कि उतना ही गहरा है जितना परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? या मेरे पाप के कारण मेरा जो प्रेम है वो घट जाता है? वचन योहन्ना के सुसमाचार में 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र को हमको दिया है. और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और जब मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ तो मैं अनंत जीवन पाता हूँ. ये एक सोचने की बात है, जब परमेश्वर ने मेरे लिए एक अनंत जीवन रखा है. सोच लो कि मैं एक ऐसा एक जगह में पड़ा हूँ, एक ऐसा एक खड्डा के अंदर पड़ा हूँ, और वो खड्डा ऐसा है कि एकदम अंधेरा है और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ. और मैं यही चीज़ की अपेक्षा कर रहा हूँ. आई एम इन अ पिट होल एंड देयर इज नो हेल्प देयर. आई कैन नॉट कम आउट ऑफ इट. इट इज़ वेरी डार्क एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ हेल्प दैट समवन विल कम एंड पुट मी आउट ऑफ दैट पिट. एंड नो वन नोज, कोई नहीं जानता है कि मैं वहां उस खड्डे के अंदर गिरा हूं. लोग आ रहे जा रहे, मैं चिल्ला रहा हूं, मेरा जो चिल्लाहट है उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है. इट्स नॉट गोइंग टू देयर इयर्स. और मैं यही, मेरे अंदर यही थड़प है, मैं कब उस खड्डे से बाहर आऊं? हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दैट पिट? मैं कब उससे बाहर निकलूं? और मेरे अंदर वो डर सा मेरे अंदर है, और एक तरफ से भूख है, देयर इज हंगर इन मी. एंड ओनली थिंग दैट, वो चीजें तब ठीक हो जाएगी जब मैं उस खड्डे से बाहर आऊंगा. लेकिन मेरे को कोई भी तरीके से मदद या सहायता नहीं दिखाई दे रहा है, और मैं खुद अपने कोशिश लगा रहा हूं ऊपर आने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है. एक तरफ से मेरा दम घुट रहा है, मैं रो रहा हूं कि कोई आएगा, कोई बचाएगा. मैं अपने कोशिश बल को लगा रहा हूं, लेकिन मेरा बल भी खत्म हो गया. ऐसा एक समय में एक ऐसा एक हाथ मेरे ओर बढ़ती है, a hand which comes towards me. It's not from the world, but something amazing. Ek aashchare chakit wali ek haath mere ko utha karke khadde se bahar rakhti hai. Aur socho us samay ki jo khushi mere andar rahega ki main abhi bach gaya. Now I am saved. Aur wo aanand ki ab main uske andar nahi hu, ab main us danger se bahar aa chuka hu. Ek alag ek khushi mere andar uthti hai, ek jagruti, ek security mere andar aati hai ki ha abhi main secure hu. Us andhere se ek ujhala ki taraf mujhe ek haath leke aaya. Kya wo us shant ke liye hai, usko main yaad rakhta hu. Kuch samay ke baad main apne jeevan chalta hu aur us haath ko bhul jata hu jisne mujhe nikala. I forget that hand which helped me at one time when I was in the pit. And I go into my life again the same. Is that only that time I remember that help? Kya wohi ek kshan main yaad rakh sakta hu? Humne dekha Petrus ke bare mein, wo lagatar Prabhu Yeshu Masih ke saath tha. Prabhu Yeshu Masih ne jo jo aashchary chakit kaam kiya, changahi diya, ye sab cheezon ek chela ke roop mein ho karke usne dekha. Lekin aisa ek kshan mein usne inkaar kiya. ऐसे काफी समय मैं भी एक भाग हो सकता हूं पतरस के जैसा. इनकार करना मेरे पाप मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक गिरने की एक 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 खड्डा जैसा हो सकता है जो वापस मैं उसके अंदर गिर जाऊं और फिर मेरे लिए कोई मदद ना आए. लेकिन हम पढ़ते हैं कि हमारे जो परमेश्वर है बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर, अ गॉड फुल ऑफ ग्रेस, लविंग, केयरिंग. ऐसे एक घटना हम लोग पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, एक ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जो जेल के अंदर, बंद गृह के अंदर, अ डंजल, अ प्रिजन, ही वॉज लॉक्ड अप इन अ प्रिजन. ही डिडंट हैव एन होप दैट ही वुड बी फ्रीड आउट फ्रॉम दैट प्रिजन. एंड इट वॉज दैट ही सॉ अ ड्रीम. ही वॉज अ बेकर, ही सॉ अ ड्रीम एंड ही डिडंट नो दैट हु would interpret. Then there was a man, ek vyakti tha jo us sapna ko bata sakta tha, aur wo tha Yusuf. To usne kaha ki kuch dinon ke baad tum yahan se bahar nikal ke jaoge aur phir se raja ke palace mein aap seva karoge. Lekin ek baat usne kaha usko us samay pe, usne ye kaha ki jab tum bahar jaoge, when you go back to the palace, please remember me. मेरे याद करना. वी कैन जस्ट रीड दैट. इट्स इन जेनेसिस चैप्टर 40 एंड वर्स 14. उत्पत्ति का 40 का 14 में ऐसा लिखा गया है, वो यहां पे कहता है कि जब तुम बाहर जाओगे, जब सब कुछ ठीक रहेगा आपके साथ, व्हेन एवरीथिंग इज गुड विथ यू, सब कुछ ठीक रहेगा, तब मेरा याद करना. लेकिन एक बात है, जब वहां से वो गया, वो उसे भूल गया. ही फॉरगॉट. आपको पता है कितना क्षण लगा उसको याद करने में? इट ऑलमोस्ट टुक 2 years फॉर हिम टू रिमेंबर अगेन. 2 साल तक यूसुफ उस बंद जगह पे ही था, उस प्रिजन के अंदर ही था. Just thinking that sometime some help will come through him and he'll be out. But God made way for him. Parmeshwar ne wo marg khola. Hum dekhte hain ki aage raja ko ek sapna gira 2 saal ke baad. Aur phir ja karke hum Genesis ka 41 ka aap agar 9 mein padhenge, I do remember my fault, the baker says. Genesis 41 verse 9. ऐसे काफी बार है कि ना हम लोग भूल जाते हैं. वी फॉरगेट एंड वी रिमेंबर दोज थिंग्स, लाइक समवन डज एनीथिंग बैड, कोई अगर कुछ गलत करते हैं उस चीज को हम याद रखते हैं. लेकिन ऐसे बात कि एक अनंत जीवन की बात जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और वो ऐसा है कि वो एकदम मुफ्त में रखा है. एक ऐसा एक चीज परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है जिससे हम चाहे कितना भी उसके सामने हम अपने आप को मतलब कितना भी अच्छा ही बना अच्छा काम करके रखे, लेकिन दैट इज रियली वो कुछ भी नहीं है। वापस हम उस गड्ढे के अंदर ना गिरे, वापस पाप को पाप का सहयोग ना दे, नॉट यू नो हेल्पिंग सिन इन आवर लाइफ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में चीज ऐसे ऑटोमेटिकली हम लोग रैप होते जाते हैं, वी जस्ट गेट फोल्डेड इनटू सिन, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ दूर तक चलने के बाद फिर एक परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो हमें चौकस करता है कि यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, सम कॉशन लाइंस कम अप। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि दैट कि हमेशा हम वैसे ही रहे जैसे हम लोग शुरुआत में जब हमारा उद्धार हुआ था, जैसे परमेश्वर का सहायता हमारे लिए आया था, जो मेरे अंदर वो जो झील था ना जब मैं वो खड्डे के अंदर था, कि जब मैं बाहर आया वो आनंद के साथ ही मैं बना रहा हूँ। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे और हम वो सहायता को हम नहीं भूले जब हमारे लिए कोई सहायता ही नहीं था। नॉट टू फॉरगेट दैट हेल्प विच केम टूवर्ड्स मी वेन देर वॉज नो हेल्प एंड वॉक इन द रियलिटी। मैं अपने आप को भी कभी कभी यही सोचता हूँ कि ना टू ऑलवेज बी नेचुरल। भाई हमेशा बोलते हैं ना बी नेचुरल कि वैसे ही रहूँ जैसे मैं घर में हूँ वैसे ही यहाँ पे भी रहूँ। कभी कभी मुश्किलें रहती हैं कि कभी कभी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कि मैं कुछ दिखावा कर रहा हूँ, तो मैं फिर अपने आप को मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना अपने आप को प्रेजेंट माई सेल्फ एज आई एम गोइंग टू प्रेजेंट। नाउ इमेजिन इफ क्राइस्ट इज हियर हाउ एम आई गोइंग टू लिव। ही नोज मी वेरी वेल। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मैं क्या हूँ, उसी तरीके से मैं अपने आप को आगे रखूँ। तो जो भी मेरे कमियाँ हैं, वॉट एवर थिंग्स आर देयर इन मी, द शॉर्ट कमिंग्स, द वीकनेसेस, दैट गॉड नोज। एंड एज लॉन्ग एज आई लिव टू बी वॉट गॉड वॉन्ट्स।
प्रेज लॉर्ड। मैं कुछ गवाही को बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो पिछले महीनों में काम किया, 6 महीने पहले अप्रैल का महीना था, मेरे ऑफिस के अंदर बहुत अच्छा, मैं प्रीवियस कंपनी में था और उसके बाद हुआ ऐसे कि उस कंपनी में बहुत अच्छा काम हो रहा था, प्रभु की दया से बिजनेस बढ़ रहा था, मैं बिजनेस डेवलपमेंट वहाँ पर चला रहा था। उसके बाद बहुत कुछ बिजनेस आने लगा और कुछ जेलस लोग थे और कुछ लोगों ने मेरी कंप्लेन हमारे MD और CEO को गलत गलत जाके बोल दिया कि किरण ने ऐसा बोला है, किरण ने वैसा बोला है, और बहुत कुछ मतलब जैसे कि हमारे MD और CEO को उन्होंने चढ़ा दिया मेरे विरोध में। उसके बाद मुझे बुलाया उन्होंने और तुरंत बोला यू हैव टू लीव द कंपनी, तुझे कंपनी छोड़ना पड़ेगा। मैंने उनको बोला कि क्या कारण है, क्यों मुझे कंपनी छोड़ना पड़ेगा, किस कारण से मेरी क्या गलती है, और उन्होंने बोला कि तूने ऐसे बोला है, तूने ऐसे किया है। वो मेरी बात ही सुनने के लिए राजी नहीं थे, वो जो बॉस थे वो सो एंग्री ऑन मी कि तू कैसे कर सकता है ये, कैसे। मैंने उनको हजार बार मतलब बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरी बात सुनिए प्लीज़, एंड आई वॉज जस्ट रिक्वेस्टिंग देम कि प्लीज़ मेरी बात सुनिए, क्या बात है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एंड ही जस्ट टोल्ड मी 20 days यू विल बी आउट ऑफ द कंपनी विदाउट एनी नोटिस, एंड बिल्कुल भी उन्होंने सोचने का बोलने का समय नहीं देना। आई वॉज जस्ट ब्रोकन, मैं पूरी तरह से टूट गया। देर वॉज नीड इन माई फैमिली, जो घर बन रहा था, घर पर पैसे भेजने होते थे हर महीने, सोचने लगा। मैंने उनको बहुत बार बात करने की भी कोशिश करी कि प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए और जस्ट गिव मी सम टाइम टू एक्सप्लेन क्या हुआ है क्या नहीं। नहीं, इतना ज़्यादा उन्होंने उनको चढ़ा के रखा था, जो जेलस थे, जब सक्सेस मतलब काम मिल रहा था मेरे थ्रू, बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा था, कुछ 60 लाख का एक प्रोजेक्ट मिला था HDFC से, दैट्स वाई दे वांटेड टू। बहुत सारी चीज़ें होने के बाद मैं बहुत टूट गया। उस समय मैं सोच रहा था प्रभु ये कैसे मेरे जीवन में, मैं इसको कैसे लूँ अभी। एंड देन आफ्टर एवरी डे वो सो हैवी फॉर मी टू गो इन ऑफिस, नो बडी इज टॉकिंग विथ मी, हर ऑफिस में फैल गया किरण का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, नो बडी इज टॉकिंग विथ मी, एंड आई वॉज जस्ट अलोन, नो बडी इज शेयरिंग डेटा विथ मी, कोई कॉल पे लंच पे साथ में अकेला बैठ रहा हूँ मैं। वो सो हैवी फॉर मी कि प्रभु ये, मैंने बहुत प्रयत्न किया उसको सुधारने के लिए, इवन दो देर वॉज नो मिस्टेक ऑफ माइंड। मैंने सॉरी भी बोला मेरे MDC को कि अगर ऐसी कोई बात है जो आपको बुरी लगी है तो मैं सॉरी बोलता, अपोलॉजी लेटर मैंने लिखा, बट नो, उन्होंने बोला 20 days में यू विल बी आउट। Literally speaking, it was very, very टफ टू टेक मी, क्योंकि अभी मुझे लगा कि मुझे मुंबई से सब कुछ एंड करके मुझे अभी मेरे होम टाउन गुजरात में वापस जाना पड़ेगा. एवरीथिंग नाउ एंडेड नाउ. एंड आई क्राइड टू लॉर्ड टू चेंज दिस, कि प्रभु इस परिस्थिति को तू बदल, कैसे भी करके इसमें से बाहर निकाल. और मैं बड़ा लड़का हूँ घर का, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली. और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय पर, लेकिन मैं अकेला था वहाँ पे, सीशोर पे बैठा था. एंड द लॉर्ड वॉज स्पीकिंग मी, किरण देक, यू नो दिस इज द टाइम दैट रियल वर्शिप हैपन्स. कि जब सब कुछ, अय्यूब के बारे में याद किया कि सब कुछ जब चले जाता है, हाथ में नुकसान आ जाता है, तब क्या हम कौन सा गीत गाते हैं. इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू सिंग हियर एंड टू प्ले, बट उस समय में जब नुकसान था, कुछ दिख नहीं रहा था, अंधकार में था, ऐसा लग रहा था कि प्रभु मेरे, मतलब एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी लोगों के सामने जाने के लिए ऑफिस में. और फिर उसके बाद मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया कि लॉर्ड इवन दो आई हैव लॉसेज इन माई हैंड, मुझे नहीं पता कि नुकसान है मेरे हाथों में, समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा, किस तरह 20 दिन के बाद मैं क्या बोलूंगा. मैंने पापा मम्मी से इस बात को शेयर किया और पता नहीं चला था, बट प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया. 20 दिन के बाद जब मेरा मई 20 मेरा लास्ट डे था, उन्होंने बोला था कि तुम बाहर निकल जाओगे. और जो दिन मेरा लास्ट डे था, उसी दिन मेरा एक इंटरव्यू आया. और तब तक को इंटरव्यूज मैंने बहुत सारा ट्राई किया. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जब मेरा लास्ट डे उसके पहले कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए, ताकि मैं मुंबई सिटी में सर्वाइव कर जाऊँ, मुझे घर जाना ना पड़े मेरा. एंड वो दिन इंटरव्यू आया, मैं कंपनी का नाम नहीं जानता था कुछ नहीं. उन्होंने बोला कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू. मैं इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू दिया. एंड आई हैड ए नीड, उन्होंने बोला कि ऐसा इंटरव्यू ठीक रहा, अच्छा रहा. एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर उन्होंने एक्सपेक्टेशन पूछा. मैंने बोला आप जो भी दोगे मैं ले लूँगा, बिकॉज इनसाइड आई न्यू आई हैव लॉस्ट माई जॉब. मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन उनको बताया नहीं, आप जो भी दोगे मैं काम करूंगा. यू सी माई वर्क एंड देन यू डिसाइड द सैलरी. क्योंकि डेस्परेशन था कि मेरा जॉब, मैंने उनको बताया नहीं कि जॉब छूटा ऐसे करके, बट आई वॉज सो डेस्परेट टू गेट द जॉब बिकॉज आई हैव टू सर्वाइव. एंड आई वॉज प्रेइंग लॉर्ड प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो. और उसके बाद फिर मेरे ऑफिस के अंदर मुझे रिलीव नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि 30,000 आपको देना पड़ेगा तभी हम आपको, जस्ट सताने के लिए 30,000 यू पे तभी हम आपको वर्क एक्सपीरियंस देंगे, रिलीविंग लेटर देंगे. आई डिडंट हैड मनी दैट टाइम, मेरे पास पैसे नहीं थे. और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ऐसा पेचीदा हो गया था कि कैसे मैं मैनेज करूँ सारी चीज़ों को. बहुत सताने की कोशिश कर रहे थे. और फिर नई कंपनी का 2-3 दिन के बाद उनका कॉल आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोजिशन एंड ये है वो है करके. उसके बाद मैंने वेबसाइट देखा कंपनी का, ये कंपनी क्या है करके, बिकॉज आई डिडंट न्यू कि कंपनी भी क्या है. एंड इट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी फ्रॉम यूएसए. एंड देन, और मैं इतना धन्यवाद प्रभु का देता हूँ कि प्रभु कई बार अद्भुत कामों को करते हैं, हमारी समझ से, हमारी योग्यता से, हमारी औकात से बढ़कर प्रभु कार्य करते हैं. और वो कंपनी ने मुझे 46% रेज में, डेजिग्नेशन में, हर चीज में रेज करके मुझे वो पोजिशन दिया, जो मेरा प्रीवियस कंपनी, जो मेरा लॉस हुआ था. और वहाँ पे मुझे मिला सैटरडे संडे ऑफ मिला, जो प्रीवियस कंपनी में नहीं था. यू नो व्हेन आई जॉइन दैट कंपनी, मैंने उनको बताया कि मेरा इश्यू है, मुझे वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है लेटर, क्योंकि मुझे कुछ पैसे देने. दैट कंपनी टोल्ड वी विल गिव यू दैट मनी 30,000, तुम आ जाओ वहाँ से. देन आई सो लॉर्ड हाउ यू कैन वर्क ए कंपनी, अनदर कंपनी पेइंग माई मनी. और उन्होंने 30,000 वो कंपनी ने पे करके मुझे वहाँ से लिया. देन आई वेंट देयर. उसके बाद मिस्टेकनली मुझसे इनबॉक्स डिलीट हो गया था मेरा कंपनी का, प्रीवियस कंपनी का. एंड दैट कंपनी गॉट अ क्लू कि अभी इसको हम पूरी तरह से, दे टोल्ड मी दैट वी आर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट यू दैट यू हैव स्टोलन अ डेटा फ्रॉम आर कंपनी. और उन्होंने सारे सीईओ, सारे लोग अगेंस्ट में हो गए मेरे. एंड देन आई वाज लॉर्ड, एक के बाद एक सारे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, कैसे मैं इसको हैंडल करूँ लॉर्ड. और मैंने बोला कि इट वॉज जस्ट वन मेल डिलीट करने के बाद सिलेक्ट ऑल हो गया और वो ट्रैश में से भी निकल गया वो सब कुछ. देन आई एम गॉन लॉर्ड. एंड दिस ग्रुप वॉज सो रिच पीपल इन मुंबई सिटी व्हेन आई वॉज वर्किंग. मैंने बोला प्रभु अगर ये लोग मेरे ऊपर केस फाइल कर देंगे तो मैं चक्की पीसता रह जाऊंगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा. प्रभु मेरे ताकत नहीं है कि मैं इस अजनबी शहर के अंदर किसी के सामने लड़ सकूं केस के सामने. एंड आई जस्ट नील डाउन एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग लॉर्ड नाउ आई एम गॉन. प्रभु मैं अभी कुछ नहीं कर सकता. आई सरेंडर माई लाइफ लॉर्ड. प्रभु तू जो भी करेगा वो मेरे लिए अच्छा होगा. एंड आई जस्ट सरेंडर माई लाइफ. मैंने प्रभु को पूरी तरह से सौंप दिया अपने आप को. एंड आई क्राइड लॉर्ड आई एम रेडी फॉर एनीथिंग नाउ. इफ आई हैव टू गो इन जेल एंड प्रिजन आई एम रेडी. इफ आई हैव टू, मेरे जीवन में अगर लॉस होना है प्रभु आई एम रेडी फॉर दैट थिंग. बट मेक श्योर दैट यू आर विथ मी. तू प्रभु मैं कहाँ भी मुझे लेकर जा, जेल में ले जा, कुछ भी हो जाए प्रभु नुकसान, बट मेक श्योर कि प्रभु तू मेरे साथ रहेगा हर जगह पर. प्रभु उसका सामना मैं करूँगा. और मिरेकुलसली एक सर वहाँ पे कैथलिक थे, उनको मैंने कॉल किया, सर ऐसा ऐसा कंपनी में हुआ है. देन ही टोल्ड कि डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ देम. उस सर ने हमारे एमडी सीईओ को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है और मेल जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रैक वो वेंडर से किरण करके देगा, उसने दिया. एंड दैट डिडंट हैपन ऑल दिस थिंग. एंड व्हेन आई जॉइन दिस न्यू कंपनी, ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर एक नथिंगनेस में से, एक डार्क पीरियड से कैसे बाहर निकालते, जो मैंने कभी नहीं, वो 20 दिन जो मेरे थे, मैं रात को सो नहीं पाता था. आई यूज्ड टू क्राई लॉर्ड, मुझे एकदम धड़कन तेज हो जाती थी, घबराहट से महसूस, व्हाट विल हैपन, यू नो, कैसे तू सर्वाइव करेगा, कैसे तू घर पे जो लोन लिया कैसे पे कर पाएगा. आई वाज जस्ट क्राइंग टू लॉर्ड दैट लॉर्ड यू नो माई नीड्स, प्रभु तू मेरी जरूरत को जानता है. प्रभु आज अगर ये सारी चीजें हुई हैं, आई नो आई कांट सी, मैं आगे का नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु तू सब कुछ जानता है मेरे जीवन के बारे में. देन वहाँ से मैंने सब कुछ रेज्यूमे सब ये न्यू कंपनी ज्वाइन किया. इट वॉज सो वंडरफुल टू सी गॉड्स हैंड इन एवरीथिंग, यू नो दो कि प्रभु कितना भला है. एंड द पीपल वेर सो हैप्पी यहाँ पे कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन किया है, बहुत सारी चीज़ें की. व्हेन आई ज्वाइन अ न्यू कंपनी एंड आई एम रिपोर्टिंग टू सीईओ देयर एंड डिजिग्नेशन में हर चीज़ में जो मतलब मेरी क्षमता नहीं थी, व्हाई आई एम टेलिंग नॉट टू ग्लोरीफाई माई सेल्फ बट व्हाट गॉड कैन डू, यू नो, इन आर हमारे नुकसानों के अंदर परमेश्वर कैसे हमको उठा सकता है. एंड ही गिव द डे आई ज्वाइन माई कंपनी दे गिव मी आईफोन एज अ गिफ्ट. कैन यू इमेजिन, नेक्स्ट डे दे गिव मी मैकबुक. और मैं बोल रहा था कि प्रभु हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लॉर्ड आई कांट अफोर्ड एंड आई कांट थिंक फॉर दैट थिंग, यू नो, बट गॉड इज सो प्रेशियसली वो सारी चीज़ों को संभालते. और वो जो है ओबरे होटल के बाजू में हमारा ऑफिस है, द सी शोर इज इन फ्रंट ऑफ दैट ऑफिस, वी कैन सी. इन एवरी डे व्हेन आई सिट इन दैट सीट ऑफ माइन ऑफिस, जब मैं बैठता हूँ, मैं प्रभु को केवल धन्यवाद देता हूँ क्योंकि प्रभु लॉर्ड दिस इज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे कार्य कर सकता है. यू नो व्हेन ही क्लोजेस वन डोर, जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक दरवाजे को बंद करता है, ही हैज ग्रेटर डोर्स फॉर आवर लाइफ. वो हमारे लिए अद्भुत दरवाजों को खोलता है जो हम सोच नहीं सकते. एंड आई जस्ट वांट टू टेस्टिफाई दैट, यू नो, जो भी वो हुआ आज, मैं उसके लिए इतना धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु अगर वो दरवाजा बंद नहीं हुआ तो 10 साल तक भी वो सैलरी में, वो उस पैकेज में या उस डिजिग्नेशन में नहीं पहुंच पाया था. मैं नहीं समझ पाया, मैं समटाइम्स आई यूज टू फाइट विथ लॉर्ड, हाउ कैन यू अलाउ दिस थिंग लॉर्ड, तुम्हें पता है मेरी जरूरत है. यू वोंट बिलीव, शायद वो समय मुझे आंसर्स नहीं मिले, बट व्हेन लॉर्ड ओपन दिस मिरेकुलस डोर फॉर मी विदाउट माई मतलब एक्सपेक्टेशन से बढ़कर, और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज को मैंने समझा जो उत्पत्ति 50 अध्याय और 20 वचन में लिखा है, जो यूसुफ अपने भाइयों से कहता है कि तुमने तो मेरी हानि ठानी थी लेकिन मेरे परमेश्वर ने उसको मेरे भलाई में बदल दिया. मुझे आज लगता है कि जो लोगों ने मेरे जलस होकर कंप्लेन की थी, आज उनको जाकर मैं धन्यवाद दूं क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया और ये प्रभु की आशीष मुझे मिली. यू नो समटाइम्स दिस पीपल हु अपोज अस, जो हमारे विरोध में होते, जो हमारे अगेंस्ट में होते, वही लोग हमें परमेश्वर की आशीष से जोड़ देते हैं. And I just want to encourage everyone in the family that, you know, God really knows our need. Parmeshwar हमारी ज़रूरतों को जानता है. You won't believe, मुझे लगा था 20 दिन के बाद I am jobless person, मैं job search करूँगा. मुझे एक दिन का loss तक नहीं हुआ. 20th को मैंने छोड़ा वहाँ पे, 21st को this company telling, we need you as early as possible. आप जल्दी से जल्दी join करो. मैंने एक दिन भी मेरा loss payment नहीं हुआ, तुरंत वहाँ पर मैंने join किया. And इट इज़ सो प्रेशियस दैट जब मैं ये बातें मैं सोचता हूँ कि प्रभु अगर आप नहीं होते तो आई वुड हैव इन प्रिजन, आई वुड हैव, हाउ कुड आई फाइट दिस पीपल. आई कन्फेस लॉर्ड, कई बार मैं मिस्टेक करता हूँ, इट इज़ नॉट दैट कि हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन उन खतरों से परमेश्वर बचाता है. आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक द लॉर्ड कि सच में परमेश्वर भला है, सच में परमेश्वर विश्वास योग्य है. जब हम टूटते हैं उसके पास जाते हैं, अपनी तकलीफों को उसको बताते हैं, परमेश्वर के पास मार्ग है. परमेश्वर कभी ऐसे नहीं सोचता कि किरण की तकलीफ बहुत बड़ी है, मैं कैसे मदद करूं. मेरे लिए लगा कि बहुत बड़ा ये नुकसान हो गया अभी, लेकिन प्रभु को पता था कि इसको कुछ ज्यादा की जरूरत है और उस दरवाजे को प्रभु ने बंद किया. और मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ बाय दिस टेस्टिमनी दैट, यू नो, आई एम नॉट लुकिंग दिस जॉब और ये सारी चीजें कि ये प्रभु की आशीष है. ये आशीष कल चले जाएगी शायद, बट आई लर्न वन थिंग कि अगर परमेश्वर साथ में है, नो स्टॉर्म्स कैन स्टॉप गॉड्स ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ. कि चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए, लेकिन अगर परमेश्वर साथ में है, कुछ बेहतर और भलाई से भरा ही परमेश्वर ने रखा है. वचन कहता है रात को अगर रोना पड़े, लेकिन सुबह परमेश्वर हमको आनंद देता है. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।